Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal.
नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद अमित।
सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ निश्चित।
ग्रॉस जीएसटी कलेक्शंस राइज टू ऑल टाइम हाई ऑफ ओवर 2,42,000 करोड़ रुपीज इन अप्रैल दिस ईयर। इन बुलियन मार्केट गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस डिक्लाइन एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस ट्रेड मिक्स्ड।
आर्थिक सुर्खियों में, अप्रैल के दौरान सकल जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा। सराफा बाजार में सोने और चांदी के भावों में गिरावट और वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में मिला जुला रुझान।
Before we proceed any further, here is an advisory. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जीएसटी संग्रह, अप्रैल के दौरान वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी संग्रह 8.7% की बढ़त से अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 2,42,000 करोड़ रुपए से अधिक दर्ज हुआ। पिछले माह का शुद्ध जीएसटी संग्रह 2,10,000 करोड़ रुपए रहा था, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 7.3% अधिक है। पिछले महीने सकल केंद्रीय जीएसटी संग्रह 52,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जबकि राज्य जीएसटी संग्रह 61,300 करोड़ रुपए से अधिक रहा। पिछले माह एकीकृत जीएसटी संग्रह 1,29,232 करोड़ रुपए दर्ज हुआ। पुनीत, हालांकि खबर बहुत अच्छी है सरकार की किट्टी में, अगर इस तरह से जो संग्रह बढ़ता है और अगर हम पिछले वर्ष के मुकाबले इसका की तुलना करें तो 8.7% की बढ़त दर्ज हुई है, क्या दर्शाता है अर्थव्यवस्था में अभी भी हमारी उतनी मजबूती बनी हुई है? ये सिर्फ इसका वजह है या कुछ और भी वजह है?
देखिए अमित, ये जो आंकड़ा है जो जीएसटी कलेक्शन का, बहुत ही ईगरली हम अवेट कर रहे थे, क्योंकि इस आंकड़े से हमें अनुमान लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था, बिकॉज जीएसटी जो है वो सीधा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, तो ये हमें एक फर्स्ट एक एस्टिमेट देता है कि जो अर्थव्यवस्था है उसकी ग्रोथ की क्या दशा है। खासतौर से जब से ये युद्ध शुरू हुआ है खाड़ी के देशों में, गल्फ में, तो ऐसी आशंकाएं थी कि जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, सर्विसेज एक्टिविटी है, इसमें थोड़ी गिरावट आएगी। और यदि हम मार्च का, क्योंकि जो लेटेस्ट अवेलेबल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा है वो मार्च के महीने का हमारे पास अवेलेबल है, और मार्च के महीने में जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी जो कहते हैं हम, वो सिर्फ 4% ग्रोथ आई थी, तो जो करीब 5-6 महीने का वो लोएस्ट लेवल था। तो हमें ऐसा लग रहा था कि जो असर है वॉर का वो काफी पड़ रहा है इकोनॉमी पे, और क्योंकि मार्च के बाद अप्रैल के महीने में उसका असर और बढ़ सकता था, तो ऐसी आशंका थी कि हम देखेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कम है और उसका फर्स्ट इंडिकेशन जीएसटी कलेक्शन होता। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये आंकड़ा जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और इस आंकड़े से अभी तक ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में उतनी गिरावट नहीं है जो एनेक्डोटली हम सुनते हैं कि माइग्रेंट लेबर नहीं है, या टेक्सटाइल सेक्टर में, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, या कंस्ट्रक्शन सेक्टर में थोड़ी गिरावट आई है। पर मुझे लगता है जीएसटी कलेक्शन देखकर कि उतना बड़ा असर नहीं पड़ा है, नेगेटिव असर, जितना हमें डर था या फर्स्ट हमारा एस्टिमेट्स थे।
ये क्या सिर्फ जो हमारी घरेलू खपत है या घरेलू गतिविधियां हैं उसमें समर्थन मिल रहा है? क्योंकि जैसा आपने भी जिक्र किया कि जो निर्यात की गतिविधियां हैं वहां पे तो दिक्कतें आई हैं, साथ ही साथ अगर निर्माण गतिविधियों में भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, तो इस तरीके के जीएसटी संग्रह से हम क्या उम्मीदें लगा सकते हैं?
इनफैक्ट अमित, आई वुड लाइक टू ऐड टू व्हाट यू आस्क्ड। इनफैक्ट पुनीत, यू आर आल्सो डिस्कसिंग अबाउट द वेस्ट एशियन क्राइसिस एंड द टर्मोइल दैट वी आर गोइंग थ्रू, नॉट जस्ट इन इंडिया बट द वर्ल्ड ओवर। नाउ विद दिस काइंड ऑफ जीएसटी कलेक्शन, यू नो, इट्स एन एड ऑन ओनली, kind of right. Every time, you know, these figures come up, we see that there has been an increase in the GST. Now, with this kind of figures coming up in such turbulent times, of course, is very heartening. One, of course, Amit mentioned about. And the second thing which I would like to ask, that the Indian economy has been so resilient. The export, as Amit mentioned, has been badly hit, of course, courtesy of the war which is happening now. So have we really reached that mature stage, the Indian economy, which can be self-sustaining when it comes to that?
So, Nishit, I would like to say that we are now in that mature stage of economic growth now, but the truth is that Indian economy is still gaining traction. We are still transforming, you know, from a developing economy to a developed economy, which will probably take a few more years. But the good thing is that government's policies have been very robust. Mm. And the most important thing about government policy at this stage is that it is a proactive policy. So it anticipates problems, it anticipates what could be the challenges for the economy going forward, and therefore we see a policy action much ahead of the problems which actually arise. And again, in the latest crisis, what we saw was that government was well prepared with a plan to tackle energy shortages and the secondary effects that would come from it. So clearly, I think while the economy is still work in progress towards a more developed, more robust economy, government reaction has been very positive. They have been well prepared to deal with the situation.
The preemption.
I think that is far more important. In many other countries around the globe that we see, the countries were not prepared, and therefore there was a crisis. और अमित जो आपने सवाल पूछा कि जो आंकड़े हमारे सामने आए, देखिए जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेक्टर थे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि एक्सपोर्ट सेक्टर था, वहां पर हम देख रहे थे कि ऑलरेडी कुछ बदलाव आ रहा था, कुछ चैलेंजेस आ रहे थे और उतना एक्सपोर्ट्स अफेक्टेड थे बिकॉज ऑफ द लॉजिस्टिकल इश्यूज. तो हमने ये देखा कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वहां पर रूरल कंजम्पशन को गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, और हम सुन रहे थे कि माइग्रेटरी जो माइग्रेशन लेबर है वो रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, गांव में लोग जा रहे हैं वापस बिकॉज शहरों में उनको मुश्किल आ रही थी सस्टेन करने में. तो गवर्नमेंट ने रूरल इकोनॉमी में सपोर्ट करा, और जो हमारे पास अभी क्विक एस्टिमेट्स हैं, जो आंकड़े हैं जो इंडस्ट्री से हमें आते हैं, उनको अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि रूरल कंजम्पशन जो थी वो बेहतर हुई है. तो एफएमसीजी कंजम्पशन थोड़ी पिकअप करी है. तो मुझे लगता है कि थोड़ा, हालांकि हमें अपर एंड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, लग्जरी आइटम्स, वहां शायद कंजम्पशन थोड़ी कम हुई हो, ट्रैवल में कहते हैं थोड़ा हिट हुआ है, लेकिन जो कंजम्पशन थी रूरल सेक्टर में वो उसके आंकड़े जो है वो बेहतर है. तो एक मिक्स्ड बैग है. इट्स नॉट, आई वुड नॉट से इट इज कंफर्टेबल, बट सो फार वी हैव डन वेरी वेल.
पुनीत, आपकी बात से मैं दो चीजें जरूर जानना चाहूंगा. देखिए, अगर ये रूरल इकोनॉमी के सपोर्ट से है लेकिन फिर भी ऑल टाइम हाई है, ये संकेत निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं तो उम्मीदें जगाता है. दूसरा, आपने जो ये बताया कि अगर रूरल इकोनॉमी के साथ साथ कुछ चीजें, कुछ चिंताएं अभी भी हमारी बरकरार हैं, बनी हुई हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या हमको ये आंकड़े कुछ उम्मीदें ज्यादा नहीं जगाते, और हम इसको ढाल बना के कहीं आगे बढ़ने में हमें कितना मादा रखना चाहिए?
देखिए, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि तो एक तो हो गया कॉन्सेप्चुअल लेवल बात कर रहे हैं, पर
एक चीज और इसी में जोड़ूंगा, और अप्रैल का महीना, मतलब आप समझिए वित्तीय वर्ष का शुरुआती पहला महीना, आमतौर पर सब चीजें थोड़ी स्लो हो जाती है.
बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही कहा, उसको हमने ट्रेंड को बीट किया है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है. और उसका खास कारण मैं बताता हूँ आपको. अगर आप जो ऑटोमोबाइल के डेटा देखें तो रिकॉर्ड सेल्स आई हैं कार्स की, विच इज अ सरप्राइज, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. आई मस्ट एडमिट कि ज्यादातर इकोनॉमिस्ट जो थे वो ये बात एक्सपेक्ट नहीं, उनको लग रहा था कंजम्पशन में कमी आएगी, क्योंकि एक तो शेयर मार्केट में गिरावट आई थी पहले, तो वहां पर हम देख रहे थे थोड़ा सा असर पड़ता है कंजम्पशन के ऊपर. फिर ये वेस्ट एशिया क्राइसिस था, पेट्रोल की कीमत को या सप्लाईज को लेकर के चिंताएं थी, ऐसे र्यूमर्स थे, तो हमें ऐसा लगता था कि जो कंजम्पशन है वो कम होगी. और हम देखते हैं साथ में कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, पैसेंजर व्हीकल्स, वहां पर रिकॉर्ड सेल्स सामने आई है. अभी मारुति जो कि काफी बड़ी भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है, उनके जो आंकड़े आए सेल्स के, माइंड ब्लोइंग आंकड़े आए, जो इवन लास्ट क्वार्टर के आंकड़े आए. तो मुझे लगता है कि हमें ये बहुत अब इसका विश्लेषण करना एक बड़ी बड़ी बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है, भारतीयों में ऐसी क्या खास बात है हमारी इकोनॉमी में.
Probably one point was the rationalization of the GST as well, Puneet. If you could remember, you know, last year in October when it happened, or September rather.
So, absolutely, I think it helped a lot. I mean, it really helped.
लेकिन उसके बावजूद भी अगर मार्च का महीना निकलता है जहां सब चीजों पे बहुत बार छूट दी जाती है कि ईयर एंड का आपका क्लोजिंग मंथ है और वहां पे सब अपनी अपनी बैलेंस शीट मजबूत करने में लगते हैं, उसके बावजूद अप्रैल महीने शुरुआत में अगर इतनी धमाकेदार होती है
तो बिल्कुल मैं सच कह रहा हूँ आपको कि एक चौंकाने वाले आंकड़े, और हम लोग इसकी इंतजार कर रहे थे, हम देखना चाह रहे थे कि जीएसटी का डेटा क्या आता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की ये राय थी कि जीएसटी का डेटा अच्छा नहीं आएगा, ऐसा लगता था हमें, पर सो फार इट्स बीन रियली इंप्रेसिव शो.
चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं. महाराष्ट्र दिवस के कारण भारतीय शेयर बाजारों में आज अवकाश रहा. मुंबई शेयर बाजार और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में शेयर, प्रतिभूति, मुद्रा बाजार सहित सभी वित्तीय कारोबार नहीं हुए. हालांकि कल घरेलू शेयर सूचकांकों में लगभग 0.7% की गिरावट दर्ज हुई थी. सेंसेक्स 583 अंक के नुकसान से 76,914 और निफ्टी 180 अंक की गिरावट से 23,998 के स्तर पर बंद हुआ था. उधर महाराष्ट्र दिवस और बुद्ध पूर्णिमा के कारण ही आज अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार भी बंद रहा. हालांकि डॉलर इंडेक्स 97.9 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया. पुनीत, वही पुरानी चर्चा को वापस यहां जोड़ूंगा, क्या हमारे पास ये मानने के पर्याप्त कारण हैं कि जीएसटी के जो आंकड़े आए हैं वो बाजार को एक नई दिशा सोमवार को देते हुए नजर आएंगे?
देखिए, सोमवार को तो काफी और बहुत सारे कारण हैं जो बाजारों को के सेंटिमेंट को अफेक्ट करेंगे. बहुत बड़े इम्पॉर्टेंट इलेक्शन रिजल्ट्स का भी एक माहौल होगा, जीएसटी आंकड़ों की भी होगा, यूएस फेड का भी जो आंकड़ा आया है, और यूएस मार्केट्स में काफी उछाल आया भी कल परसों, और एक कंटिन्यूइंग वरीज देखिए वेस्ट एशिया को लेके. जैसे हम कहते हैं कि आज वरी में चार बड़े फैक्टर्स, चार अल्फाबेट्स हैं, वॉर, ऑयल, अपना जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, और जो इन्फ्लेशन वगैरह जो है, इसको लेकर काफी चिंताएं हैं. चारों फैक्टर्स हैं जो बड़े फैक्टर्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म डेफिनेटली एक हमको एक कॉन्फिडेंस देता है कि इकोनॉमिक में अभी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आया है. एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म वी हैव बीन एबल टू बियर विद दिस प्रेशर फ्रॉम वॉर. लेकिन देखिए, अगर ये चलता रहता है, अगर ऑयल का दाम कल भी $125 पर बैरल टच हुआ हाई लेवल पर, ये बहुत बड़ी भारत के लिए चिंता है. मैं ये नहीं कहूंगा कि हमें इसको एक फॉर ग्रांटेड ले लेना चाहिए रेजिलियंस को, या हमें कोई बिल्कुल इसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए. हमें ध्यान देना जरूरी है, वी शुड बी कॉशियस. ऐसा नहीं है कि वी कांट बी कॉम्प्लेसेंट अबाउट दिस, लेकिन डेफिनेटली गोइंग फॉरवर्ड अभी हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हमें एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ देती है, बट वी नीड टू बी कॉशियस एंड वी नीड टू बी प्रोएक्टिव.
और भारतीय अगर बाजारों के आंकड़ों को देखें, सूचकांकों को देखें, तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई से 10% से ज्यादा गिरावट अभी तक आ चुकी है, तो ऐसे दौर में अगर कुछ समर्थन मिलता है.
देखिए, बड़ी अगेन मैं थोड़ा सा व्यापक इसमें दृष्टि रखूंगा कि भारत में हमने देखा है कि विश्व के बाजारों में, अमेरिका में इस वक्त स्टॉक मार्केट्स ऑल टाइम हाई पर है, नैसडैक, S&P 500 रिकॉर्ड हाई पर है, दुनिया के बड़े और इकोनॉमीज में भी स्टॉक मार्केट्स ऑल टाइम हाई पर हैं, जबकि इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो नेगेटिव हैं. जैसे हमने बात कही करेंसी की, इन्फ्लेशन की, वॉर का चल रहा है, ऑयल को प्राइसेस को लेकर चिंताएं चल रही हैं. ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि इकोनॉमिक कंसर्न्स हैं उसके बावजूद भी स्टॉक मार्केट्स काफी ऊपर हैं दुनिया भर में. भारत में क्योंकि काफी अंडर परफॉर्मेंस रहा है, तो उसके दो मुख्य कारण हैं. एक मुख्य कारण है जो ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं और उससे हमारी अर्थव्यवस्था नेगेटिव इफेक्ट आता है. दूसरा है जो रुपी में बहुत भारी गिरावट हुई है वीजा विद द डॉलर. कल 95 रुपीज टू द डॉलर का आंकड़ा एक बार तोड़ दिया था रुपया ने. तो मुझे लगता है ये दोनों चिंताएं थोड़ा हमारे सेंटिमेंट को अफेक्ट कर रही है. जैसे ही वॉर में की सिचुएशन इंप्रूव होगी, मुझे लगता है कि वहां से भारत के बाजार में बहुत बड़ा पुल बैक आएगा, और वो अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है मुझे लगता है इन्वेस्टर्स के लिए अगर ऐसा होता है.
चलिए नजर डाल लेते हैं एशियाई शेयर बाजार पर. मजदूर दिवस के कारण अधिकांश एशियाई शेयर बाजार भी आज बंद रहे. जापान का निकेई 0.4% की बढ़त से बंद होने में कामयाब रहा. उधर मजदूर दिवस के कारण ही जर्मनी और फ्रांस के शेयर बाजारों में भी आज अवकाश रहा. लंदन का शेयर बाजार शुरुआती सत्र में 0.5% से अधिक की तेजी के साथ कारोबार करता नजर आया.
Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today said that India has emerged as the world's fifth largest exporter of processed crude, addressing the third vibrant Gujarat Regional Conference at Oro University in Surat. The minister said after the energy crisis, the country has not only diversified its energy supply, but has also successfully produced 60% of the LPG domestically. He emphasized that despite the global supply chain disruptions and rising freight costs, the government has maintained stable retail energy prices, reflecting its commitment to the common citizen.
The government absorbed the shock at the fiscal system level rather than passing it immediately on to the consumer's wallet. And because preparations made over the last decade, we diversified our sources. Crude sourcing has now expanded from 27 countries to 41. And we increased our domestic production by 60%. And also because we are incentivizing the movement to natural gas.
And moving on to the U.S. markets, major U.S. stock indices surged in the final trading session of April, driven by upbeat earnings reports. The Dow Jones Industrial Average climbed over 1.6% to close at 49,652. The S&P 500 rose 1% to settle at 7,209. And the Nasdaq Composite Index jumped 0.9% to end at 24,892. Both the S&P and the Nasdaq reached record closing highs and logged their biggest monthly gain since 2020. On the macroeconomic front, according to the Labor Department's report, initial claims for the state unemployment benefits fell by 26,000 to 1,89,000 for the week ending April 25 and dropping to the lowest reading since 1969. Meanwhile, the real gross domestic product GDP increased at an annual rate of 2% in the first quarter of 2026, according to the advanced estimate released by the U.S. Bureau of Economic Analysis, BEA. This follows a 0.5% rise in the fourth quarter of 2025, when activity was held back by a sharp contraction in federal spending. Puneet, the data from the U.S. markets somewhat throughout a positive signal. But as cliched as it sounds, I would again come back to the domestic markets and the Indian markets when it opens on Monday. Of course, many factors you mentioned about the election results happening. Now, would this momentum, as in the U.S. markets kind of the push or the positive thing that we have seen in the latest data, would that spill over in the Indian markets, or the Indian election results would have an overbearing effect overall?
So, Nishit, my experience is that while the local politics affects the sentiment, you know, which is more short-term, but overseas markets, economic trends, they have a more long-term effect on the markets. So, my guess is that we might see some kind of a sentimental reaction in the opening parts because of the election results. But I think the more durable impact will be actually from these numbers that you just read in the U.S. markets, the economic growth, the kind of output which is happening there. So, the U.S. economy, which we thought would be going through again a very difficult phase, turned out a 2% GDP growth. No, for an economy which is $30-40 trillion economy, world's largest economy, if it grows by 2%, it is huge. It really adds a lot of wealth, a lot of money to people's pockets. So and again, like you saw, the unemployment numbers in US have now fallen again to record lows. Right. So despite everything, you know, tariff wars, Gulf War, all kinds of possible worries that we could have never thought of, everything coming together at the same time, and yet the world's largest economy continues to be very, very resilient, very strong. I really don't know. I mean, we are beginning to think that maybe these are the effects of the technological advances that we are making, the digital economy which is coming in, the kind of advances which are being made in technology. Yeah. Maybe the economy is becoming so robust and resilient because of these things. Still, these are early days. We still don't know why, but at least the numbers are telling us that economy seems to be going far beyond this traditional concerns that we used to have. So I think these issues will really matter to the Indian markets and Indian investors in the long term.
Right. The U.S. being, of course, the leading, the advanced economy, as you rightly mentioned, 35-40 trillion economy. And now, with these numbers and the positive signs, signals and all, and the resilience, which, of course, is reflected in the numbers as well, the unemployment figures that have come in. So can we safely, to some extent, can say that we are in a relatively safer zone, when vis-a-vis, when juxtaposed with the crisis that we are going through?
So I would be really happy to say that we're in a safe zone, but unfortunately, economy economy and particularly political economy is so unstable these days that so while the politics of the world is very unstable, we have a political situation which is really, I think, unstable, rather explosive, I would say. So you have the war in Europe, you have unstable Gulf, you have other concerns all over the world. Yet the happy thing is that economies of the world appear to be weathering the storm pretty well. Even interestingly, even the Gulf countries. So we have seen Saudi Arabia and UAE, they are able to restore their oil exports through a different route, through the Red Sea. They've been able to restore their levels of production and exports to the pre-war levels. So that is the kind of resilience we have seen in economies. I guess it is very good news. And I hope that this really carries on. Right now, we are doing much better than we expected. And I hope this this really spills over the next few months.
Right. कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं. सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF पर निर्यात शुल्क में कटौती की है. नई दरें आज से लागू हो गई हैं. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार डीजल पर 23 रुपए प्रति लीटर का निर्यात शुल्क लगेगा, जबकि एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF पर 33 रुपए प्रति लीटर का निर्यात शुल्क लागू रहेगा. पेट्रोल पर पहले से ही निर्धारित शून्य निर्यात शुल्क को बरकरार रखा गया है. पुनीत, अभी पेट्रोलियम मंत्री महोदय ने भी कहा था कि भारत पेट्रोलियम पदार्थों का बहुत बड़ा निर्यातक बनकर उभर रहा है, और साथ ही साथ में अगर ऐसे निर्यात शुल्क में कटौती की जाती है, इसके मायने थोड़ा सा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए समझाने का प्रयास कीजिए.
देखिए, भारत के लिए जैसे हम लोग नॉर्मली हम समझते हैं कि जो हम पेट्रोल या डीजल कंज्यूम करते हैं वो एक उसके प्राइसिंग जो है वो बड़ी एक सेंसिटिव इशू रहता है. लेकिन हम बिल्कुल मैं इस बात पे गौर देना चाहूंगा कि जो एक्सपोर्ट स्टेटस आज भारत का वो बहुत बड़ा एक स्टेटस बनकर उभरा है. पूरा यूरोप में काफी बड़ी लेवल पर वो इंडिया के जो रिफाइनर्स हैं उनके आउटपुट पर डिपेंड करते हैं, और पर्टिकुलरली क्योंकि गल्फ से रिफाइंड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो भारत का जो स्थान है विश्व इकोनॉमी में, पेट्रोलियम इकोनॉमी में, ना सिर्फ एज एन इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल बट एज एक्सपोर्टर ऑफ रिफाइंड प्रोडक्ट्स, वो एक बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है. हम चाहते हैं नेचुरली, बिकॉज हम ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, काफी ऊंची प्राइसेस पर इंपोर्ट कर रहे हैं क्रूड ऑयल, हम एक्सपोर्ट में वो पैसा कमाना चाहते हैं क्योंकि वो हम उससे सब्सिडाइज कर सकते हैं भारतीय जो हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन है, और वहां पर काफी लॉस भी हो रहा है रिफाइनिंग ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को. तो मुझे लगता है एक फाइन बैलेंसिंग एक्ट है. गवर्नमेंट इतना टाइट भी नहीं करना चाहती कंजम्पशन को, एक्सपोर्ट्स को, कि आपको वो रेवेन्यू ना आए. तो मुझे लगता है एंड इट कीप्स चेंजिंग इन फैक्ट, वो गवर्नमेंट मार्केट कंडीशन इतनी फ्लूइड है इस वक्त. अगर आप देखेंगे तो करीब करीब हर सप्ताह ये पॉलिसी में थोड़ा चेंज होता है. लेकिन हम चाहते हैं कि जो भारत का जो एक्सपोर्ट रिफाइंड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने का जो स्टेटस है वो बना रहे, और बल्कि उसमें थोड़ा इजाफा हो, आगे बढ़े उसमें. तो मुझे लगता है ये बड़ा एक बहुत ही फाइन बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है डिमांड सप्लाई को देखते हुए. एंड अगेन लाइक आई सेड, इट्स अ वेरी फ्लूइड सिचुएशन, इट ऑलमोस्ट चेंजेस ऑन अ डेली बेसिस.
जी.
And continuing in the same vein, prices of commercial LPG cylinders for 19 kg have been increased by 993 rupees. The new price in Delhi will be 3071 rupees 50 paise. Revised price will be effective from today. However, domestic LPG cylinder prices remain unchanged. Our correspondent reports that the revision is part of the regular monthly price update done by the oil marketing companies.
Indian Oil Corporation Limited has said that retail prices of petrol and diesel remain unchanged for the general public, which accounts for around 90% of the country's total consumption. In a statement, the company added that there has been no change in prices of domestic LPG cylinders of 14.2 kilograms for 33 crore consumers. It also said there has been no change in aviation turbine fuel prices for domestic airlines engaged in scheduled operation, as well as in the prices of PDS kerosene. The statement noted that price revisions have been limited to select industrial segments, which constitute a relatively small share of overall consumption and are subject to routine monthly adjustment based on prevailing international prices. According to the company, there has been no price impact on 80% of products. Price have been decreased for 4% and increased for 16%, mainly in industrial use categories. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
Puneet, we have to give it to the government and appreciate rather that the domestic prices continue to remain unchanged despite the tight situation that we are in. Okay, there has been this commercial, price uptick. That's okay. But even the report said that the major part of the LPG consumption is domestic in nature. So this is really heartening to know.
Absolutely, Nishit. Yeah. And it is quite unimaginable that crude oil prices in the last 2 months when the war started in Gulf have more than doubled. So from about $60 per barrel oil, crude oil is on the ground is about $120 per barrel plus. So despite such a large jump in crude oil prices, government is so far absorbing the loss on refined products. And I believe that and it will affect the fiscal balance to some extent, but how, in spite of it, government has been able to give relief to domestic suppliers. For commercial, of course, they can pass on the increase to the consumers, therefore the government has to price it accordingly. And I think that is also a smart move, because you have to keep that pricing in a certain zone, so that there's no hoarding and there's no black marketing. So I guess so far, again, we have done very well. LPG production, interestingly, within India has increased substantially in the last few weeks. So all these efforts are going on. And I just hope that the war gets over early, so that all these efforts, they really bear fruit for us.
And moving on to crude, the global crude oil prices displayed mixed trend today. The Brent crude was trading over 0.5% up at $111 per barrel, while the West Texas Intermediate crude was trading over 0.8% down at $104.18 per barrel when reports last came in. Where do we see the trajectory going in the coming days, if not months, Puneet?
See, for the short term, I think crude is really under pressure, and it's very sensitive to the news emanating from Gulf. But I think in the long term, after, if you look at the futures, so spot prices are about $115, $120 per barrel, but the futures prices are much lower. So market is telling us that they foresee that within next 2 months, the prices will come down.
The futures, as you mentioned, is quite an indicator of what the things,
so,
to come.
Things to come. So market is telling us that they expect the markets to cool down in the next couple of months.
Yes. And onto the bullion market. In the bullion market, 24-carat gold was trading over 0.7% down at 1,50,610 rupees per 10 grams, while the silver was trading 0.1% lower at 2,44,480 rupees per kilogram a short while ago.
Multi commodity exchange में जून के वायदा कारोबार में सोना 0.6% की गिरावट से 1,50,181 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा. चांदी भी मामूली नुकसान से 2,44,217 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई. पुनीत, बहुत समय बाद वापस से सोने और चांदी ने जो वो दौड़ लगानी शुरू करी थी वो तो थमती हुई नजर आ रही, शायद उसकी दौड़ क्रूड ने ले ली है अब. लेकिन इस स्तर पे जब डॉलर मजबूत है, रुपया कमजोर है, सोने और चांदी में कौन कहां पे खड़ा हुआ नजर आता है?
देखिए, बहुत ही मुश्किल सवाल है इसका जवाब देना, क्योंकि अगेन ये बहुत सारे इंटरनेशनल फैक्टर्स से जुड़े हुई एक ट्रेंड होता है गोल्ड और सिल्वर का. पर हमने ये देखा है कि जैसे ही वॉर शुरू हुई गल्फ में, पहले इनफैक्ट वॉर से पहले प्राइसेस काफी तेजी से बढ़े थे गोल्ड के और सिल्वर के, और जैसे ही वॉर शुरू हुई वहां पर थोड़ी गिरावट आई. मुख्य कारण यह है कि गल्फ के कुछ कंट्रीज में जहां पर गोल्ड को मोनेटाइज उन्होंने किया था, काफी सेलिंग करी थी गोल्ड और सिल्वर को, और वो पैसा उन्होंने अपनी वॉर एफर्ट में यूज किया. मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में गोल्ड और सिल्वर में नैरो रेंज में ट्रेडिंग होगी, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 to 6 months, क्योंकि पूरी सिचुएशन स्टेबिलाइज होगी. और जो डिमांड आती थी गल्फ कंट्रीज से, बहुत ज्यादा गोल्ड की काफी बड़ी बाइंग होती थी गल्फ कंट्रीज में, वो अभी बिल्कुल रुक गई है. वहां पर कोई बाइंग नहीं हो रही है, बल्कि थोड़ी सेलिंग हम देख रहे हैं वहां पर. तो आप देखेंगे दुबई में, देखिए आपको याद होगा कि हर भारतीय होता था वो गोल्ड कुछ लेके आते थे, या दुबई में काफी बाइंग होती थी इसकी, वो अभी थमी हुई है. तो मुझे लगता है जब तक ये वॉर का माहौल है तब तक शायद गोल्ड और सिल्वर में उतनी बड़ी तेजी ना आए. पर अगर मुझसे आप पूछे तो मीडियम टर्म में, नेक्स्ट 6 months टू 1 ईयर, इट माइट डू बेटर.
पुनीत, कार्यक्रम में आने और हमारे श्रोताओं तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सरल भाषा में देने के लिए धन्यवाद.
धन्यवाद अमित.
और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर.
द ग्रॉस जीएसटी कलेक्शंस राइज टू एन ऑल टाइम हाई ऑफ ओवर 2,42,000 करोड़ रुपीज इन अप्रैल दिस ईयर. In the Indian bullion market, gold and silver prices decline, and the global crude oil prices trade mixed. That's all in this edition of Market Mantra. I am Nishit Kumar, and with me,
Amit,
my co-anchor in Hindi, Amit Goel, saying adios to all our listeners until we meet again. Goodbye.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.